ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत अच्छे से रिफ्रेश किया और इस बेहद के परिवार को देख करके कितनी खुशी होती है उसका भी हमें अनुभव करवाया। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय संगम युग पर अगर हम अपने तीनों सूक्ष्म सेवक मन बुद्धि और संस्कार पर राज्य करते हैं तो आने वाली नई दुनिया में हम उस दिव्य राज्य को भी संभाल सकेंगे। हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में बिंदु रूप हैं और जब परम धाम से अपनी यात्रा की शुरुआत करती हैं तो हम विचार करें कि हमारे साथ क्या क्या आता है। उपनिषदों में एक चर्चा आती है कि एक समय था जब एक डाली के ऊपर दो पंछी विराजमान थे। एक पंछी तो डाली पर ही बैठा रहा और दूसरा पंछी डाली छोड़कर के नीचे आ गया। इस तरह से सृष्टि की शुरुआत हुई तो जो पंछी डाली पर बैठा रहा उसको उन्होंने परमात्मा नाम दिया और जो नीचे आ गया उसको उन्होंने आत्मा नाम दिया। हम सब आत्माएं परम धाम से जब नीचे आई तो हमारे साथ क्या क्या आया एक बार हम याद करें। जब हम अपने घर से चले तो अपने साथ क्या क्या लेकर के चले याद कीजिए। 5000 साल पहले जब आप परम धाम से उतरे थे तो आपके साथ क्या क्या आया था याद आ गया आप सबको। हमारे पास हमारे साथ दो चीजें आई थी। एक तो जो आत्मा के मूल गुण हैं, जिन्हें हम कहते हैं आत्मा सतोगुणी है, आत्मा के 7 मूल गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। ये जो 7 गुण हैं ये आत्मा के साथ आए और आत्मा जो परमात्मा का अति अमूल्य पुत्र है, हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि जब हमने अपने पिता जो दुनिया का मालिक है उसका घर छोड़ा तो हमारे साथ 3 परमानेंट सेवक भी आए। जब कोई भी राजा अपने महल से निकलता है तो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कुछ सेवक जरूर होते हैं। तो ये आत्मा भी जब अपने घर से चली तो इसको भी 3 परमानेंट सेवक मिले। एक है इसका मन जिसको हम कहते हैं मंत्री, दूसरी है बुद्धि जिसको हम कहते हैं राजगुरु और तीसरी है संस्कार जिसको हम कहते हैं सेना। तीनों को लेकर के आत्मा आई, इसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं था और ये तीनों ही सेवक इसके पक्के आज्ञाकारी थे। अब जब ये परम धाम से चली तो इसका पहला पड़ाव आया सतयुग। जैसे कोई राजा कहीं जंगल में अपना पड़ाव डाल देता है तो आत्मा का जो पहला पड़ाव था इस सृष्टि पर सतयुग में जब इसने पहला पड़ाव डाला तो आप जानते हैं कि जब कोई भी अपना पड़ाव डालता है तो कुछ आसपास के लोग भी सेवा में मदद करने आते हैं। तो 3 सेवक तो आत्मा के पास पहले से थे लेकिन उसको कुछ लोकल सेवक भी मिले। और वो लोकल सेवक हैं कर्मेंद्रियां। ये धरती पर पड़ाव डालने के बाद जो मिले इन्हें हम चाकर कह सकते हैं, नौकर थे तीन और उन नौकरों के भी नौकर ये हो गए चाकर। ये आत्मा को मिले और जो चाकर होते हैं उनका काम होता है नौकरों की बात मानना। तो मन बुद्धि संस्कार इन कर्मेंद्री रूपी चाकरों से काम करवाती और जो लोकल कनेक्शन होता है, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई थोड़ा पानी लाके दो, थोड़ी अग्नि लाके दो, भोजन बनाने के लिए लकड़ी का प्रबंध करो, तो ये काम तो लोकल ही करते हैं। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम इस दुनिया के साथ जुड़े, दुनिया को देखा, दुनिया को सुना, दुनिया के रसों को चखा, स्पर्श किया, तो दुनिया के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ने वाले ये चाकर थे। तो जो शुरू के हमारे पड़ाव थे सतयुग के, उनमें तो हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चला, क्योंकि हमारे तीनों नौकर कहने में थे और नौकरों के कहने में चाकर थे, बहुत अच्छे से हमारी यात्रा चलती रही। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, और जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई तो सबसे पहले इसके जो पुराने नौकर थे उन्होंने इसका कहना मानना बंद कर दिया। मन भी इसके अगेंस्ट हो गया, बुद्धि भी अगेंस्ट हो गई, संस्कार भी अगेंस्ट हो गई। और जब पुरानों ने कहना मानना बंद कर दिया तो जो नए नए मिलते थे, वो तो हर जगह नए नए मिलते, आप आबू रोड में आओगे तो यहाँ के लोग आपकी सेवा करेंगे, अहमदाबाद जाओगे तो वहां की सेवा करेंगे, जयपुर जाओगे तो वहां के लोग सेवा करेंगे। तो ये जो लोकल नौकर मिलते थे ये तो हर जन्म में बदल जाते थे, और जो परमानेंट थे जब उन्होंने कहना मानना बंद कर दिया तो जो हर जन्म में नए नए मिलते थे वो कहाँ से कहना मानेंगे। तो हर जन्म में इंद्रियां भी कहना मानना बंद करने लगी और जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी थी वो अधीन बन गई। और त्रेता का अंत आते आते आत्मा पूरी तरह से अधीन हो गई, लगभग अधीन हो गई। अब द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में ये हुआ कि नौकर और चाकर आपस में मिल गए, मिलकर के एक हो गए और आत्मा अकेली पड़ गई। अब ना उसकी कोई बात सुनता है, ना उसमें वो ताकत है। तो जैसे प्रजा का प्रजा पर राज्य, उसी तरह से नौकरों का ही नौकरों पे राज्य हो गया, सारे नौकर ही राजा बन गए और मालिक तो पूरी तरह से बंधन में आ गया, अधीन हो गया। और फिर धीरे धीरे राज्य के सारे सिस्टम ही उखड़ गए, सारे रूल रेगुलेशन बदल गए, खाना पीना बदल गया। पहले ये नियम होता था कि आत्मा आदेश देती थी भाई अब खाने का काम करना, अब सोने का काम करना है। अब आत्मा का आदेश ही नहीं है तो नौकर चाकर मिलकर के या तो सारा दिन खाते ही रहते हैं या सोते ही रहते हैं या बोलते ही रहते हैं, कोई नियम नहीं, मर्यादा नहीं, समय नहीं, अनुशासन नहीं। तो पूरी तरह से राज्य का सिस्टम बिगड़ गया, उलट गया। और कलयुग आते आते ये भी भूल गया कि राजा कोई है भी शरीर के अंदर, सबको यही लगा कि ये नौकर ही राजा और शायद इन्हीं से दुनिया चल रही है, इन्हीं से सारा सिस्टम चल रहा है, आत्मा का तो ज्ञान ही खत्म हो गया। और इसलिए व्यक्ति पूरी तरह से देह अभिमानी बन गया और राजा तो पूरी तरह से बंधन में, अंदर ही अंदर जेल में जैसे डाल देते हैं वैसी हालत हो गई। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी किसी भी राज्य का या संस्था का जो बड़ा होता है ना, वो कभी भी सामने नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हो और कंपनी के एमडी से आपको मिलना है या सीईओ से आपको मिलना है, आप उस कंपनी के गेट पे पहुंचे तो गेट पे तो आपको गेट कीपर ही मिलेगा ना, आपको सीईओ तो गेट पे नहीं मिलेगा। आप कहेंगे हमको सीईओ से मिलना है, बोलेगा आगे जाओ, आगे गए तो आपको रिसेप्शनिस्ट मिलेगा। आप बोलोगे हमको एमडी को मिलना है, बोलेगा उसका ऑफिस उस कोने में है, आप वहाँ गए, ऑफिस के सामने एक व्यक्ति बैठा मिला, वो आपको कहेगा ठहरिए मैं अंदर पूछ करके आता हूँ, आपको बुलाएंगे तब आप जाना। तो कितने पड़ाव पार करने के बाद आप एमडी के पास पहुंचे। तो ऐसे ही ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी मान लीजिए, राज्य मान लीजिए, जब आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो सबसे पहले तो नौकर जाकर आपको मिलते हैं, आंख देखती है, वो आपको सबसे पहले मिलती है, आपसे पूछती है आप कौन है, या अंदर ही अंदर आपकी पहचान करके अंदर एमडी को बता के आती है कि ऐसा व्यक्ति एक सामने खड़ा है, आपको उससे मिलना है कि नहीं मिलना है, क्या बात करनी है। तो अंदर से आदेश आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या अंदर से आदेश आता है कि हाँ इसको बिठाओ मिलना है। तो उसी तरह से फिर वाणी निकलती है, उसी तरह से फिर चेहरा बनता है, उसी तरह से फिर आगे एक्शन होते हैं, आप बैठिए, पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर साहब मिलते हैं, अर्थात आत्मा के साथ आत्मा की बात होती है। तो कितने पड़ाव पार करने के बाद आत्मा के साथ मिलन होता है। अब कोई आत्मा को जानता ही नहीं है तो वो नौकरों से बात करके चला जाता है, नौकरों से मिल करके चला जाता है, मालिक तक तो उसकी पहुंच होती ही नहीं। तो आत्मा एक बहुत अमूल्य सत्ता है जिसे इस प्राकृतिक ढांचे में बहुत ही सुरक्षित जगह में रखा गया है। पहले तो सारी इंद्रियां और उसके बाद एक बहुत सुंदर लेयर है, हमारा जो सिर है वो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, उसके अंदर आत्मा को छिपाया गया है ताकि कोई चोट लगे कुछ भी हो तो आत्मा की सीट के ऊपर असर ना आए। और ये शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा है। दुनिया में कई बार हम पूछते हैं भाई आत्मा कहाँ रहती है, तो लोग दिल में हाथ लगा देते हैं। अब सोचने की बात है कि राजा अपने नौकरों से नीचे कैसे बैठेगा, सारे नौकर तो ऊपर रह गए, आंख की सीट, उसके बाद कान, उसके बाद नाक, उसके बाद मुख, और फिर नीचे आकर के बैठे, ये तो सिस्टम ही नहीं है। सारे नौकरों से ऊपर उसकी सीट होगी, और सारे नौकरों से ऊपर वाली जगह तो केवल मस्तक ही है, भ्रुकुटी ही है, वहां बैठती है। और इन इंद्रियों का प्रोटोकॉल भी है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री संसद में बैठता है तो एक प्रोटोकॉल है भाई प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष कहाँ बैठेगा, विपक्ष का नेता कहाँ बैठेगा। तो इन इंद्रियों में भी आप देखिए एक प्रोटोकॉल है। आंख आत्मा के सबसे नजदीक है, क्यों? क्योंकि आत्मा में जो भी विचार पैदा होते हैं वो आंख के द्वारा तुरंत झलकते हैं। कान से आपको पता नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन आंख देख के आपको पता पड़ जाता है कौन क्या सोच रहा है। तो आत्मा का एक प्रकार का दर्पण है ये आंखें, और इसलिए अध्यात्म में आंखों का सबसे अधिक महत्व है। आप अपने विचारों को आंखों से प्रकट करते हो, दृष्टि देकर के सामने वाले को आप अपनी बात बता देते हो। आंखों के माध्यम से सामने वाला आपको पहचान जाता है, आपकी भावनाओं को पहचान जाता है। दुनिया के लगभग 85% सूचनाएं आंखों के माध्यम से आत्मा तक पहुंचती। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा सुख माना गया है आंखों का होना, और सबसे बड़ा दुख माना गया है आंखों का ना होना। सबसे ज्यादा पाप भी आंखें करती हैं, और अगर ये दृष्टि देती हैं, नजर से निहाल करती हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य भी आंखें करती हैं। बाबा भी हम बच्चों को आंखों के माध्यम से अपने वरदान देते आते हैं, तो कितनी देर तक दृष्टि देते हैं। सबसे अधिक आंखों का प्रयोग करते हैं बाबा, सेकेंड नंबर फिर मुख का प्रयोग करते हैं, और थर्ड नंबर फिर हाथों का प्रयोग करते हैं। तो ये आंखें आत्मा के बिल्कुल नजदीक हैं, इनको सबसे ऊंचा स्थान मिला है, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब आंखों वाले हैं। इन आंखों से हम अवतरित बाबा को देखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको आंखें नहीं है, और शायद वो भगवान को ये भी कहती हूँ कि हमें एक सेकंड के लिए आंखें मिल जाएं, तो हम भगवान को देख लें या इस खूबसूरत दुनिया को देख लें। और हमें तो 24 घंटे के लिए आंखें मिली हुई, तो हम अपनी आंखों का सदुपयोग करें। इस मिली हुई नेमत से हम वही देखें जो बाबा ने हमें बताया है, क्योंकि इनसे हम जो देखेंगे वो अंदर जाएगा और वो हमारा संस्कार बनेगा। तो मुझे अंदर क्या लेकर के जाना है? मेरी आंखें मेरे नियंत्रण में हैं? क्या मैं आंखों का राजा हूं? या देखने के बाद मुझे पश्चाताप होता है, मुझे देखना नहीं चाहिए था? तो मुझे बार बार अपने इस मुख्य सेवक की चेकिंग करनी है। ये बिल्कुल सामने है, और उसके बाद कान है, दोनों कान साइड में है। और दो है, 15% जो सूचनाएं हैं वो कानों के द्वारा अंदर जाती हैं, इसलिए कानों को भी बहुत नजदीक स्थान मिला है। इसलिए बाबा कहती हैं, पक्का करो कि एक बाबा से ही सुनना और किसी का भी नहीं सुनना है। सुनाने वाले बहुत आएंगे, लोग इतने भरे रहते हैं कि वो मौका ढूंढते हैं कि हमें कोई सुनने वाला मिले, लेकिन ये हमको सावधानी रखनी है कि जिस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं वो मैं क्यों सुनूं? मुझे ड्यूटी थोड़ी मिली हुई है। इसलिए मुझे केवल बाबा की बातें सुननी है, और जो हम सुनेंगे उसके ऊपर हमारा चिंतन चलेगा। तो अगर हमने सुना, सुनने में तो 1 सेकंड में लगेगी, लेकिन सुनी हुई बात पे चिंतन चलने में कितना टाइम जाएगा? तो सुना ही क्यों? इसलिए एक कान से सुनो और उसी से बाहर निकाल दो। बाएं से सुनो तो बाएं से बाहर निकाल दो, दाएं से कान में आवाज जाए तो दाएं से निकाल दो। हमारी दादी का आकृति थी कि एक कान से सुन के दूसरे से निकालोगे ना तो भी बीच में थोड़ा बहुत असर आ जाएगा, ये लंबी यात्रा हो जाएगी, इसलिए उसी से सुनो उसी से निकालो। कई बार कई लोग कहते हैं, जी मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन लोग मुझे आके सुना देते हैं। और कई बार कई लोग ये गर्व भी महसूस करते हैं कि देखो लोग मुझे कितनी बातें आके सुनाते हैं, माना मैं काफी अच्छा हूँ इसलिए तो लोग मुझे बातें सुनाते हैं। लेकिन एक बार बहुत अच्छी बात किसी ने सुनाई थी कि वो आपको अच्छा नहीं समझते, क्या समझते हैं बताओ? वो समझते हैं जितना भी कूड़ा है यहाँ डाल दो, इसलिए हमको कूड़ा डलवाने वाला नहीं बनना। और उसके बाद नाक है, नाक बिल्कुल सामने है, और बाबा कहते हैं, बच्चे ये नाक हमारी इज्जत की प्रतीक है, कहते हैं नाक ऊंची रहनी चाहिए इसलिए इसको सामने रखा है। और ये ऊंची कब रहती है? जब राजा अपनी शान में टिका हुआ है तो ये भी ऊंची रहती है। नहीं तो एक बार बाबा ने कहा था कि दुनिया में लोग कहते हैं कि हमारी नाक कट गई या हमारी इज्जत चली गई, बाबा ने कहा माया ने तो सबकी इज्जत मिट्टी में कब से मिला दी, अब क्या इज्जत बची है? किसी की बची ही नहीं है। 5 विकारों ने सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, तो अब आप कौन सी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो? बाबा तो इज्जत बनाने आया है। तो जितना जितना हम अपने स्वरूप में टिकते हैं उतनी हमारी नाक ऊंची रहती है, और उसके ठीक नीचे मुख है, और मुख भी 2 काम करता है, इसलिए इसको भी सामने रखा, नीचे भी रखा पर सामने भी रखा, क्योंकि ये कई बार डुप्लीकेसी भी करता है, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ बोल देता है। आंखें ऐसा नहीं कर सकती, जो अंदर होगा वही बाहर दिखाएंगी, इसलिए उनको ऊपर रखा और इसको नीचे रखा। लेकिन ये दो काम करता है, एक तो बाहर की चीज को भीतर ले जाता है और एक भीतर की चीज को बाहर निकालता है, और दोनों में बहुत सावधानी चाहिए। आपको पता है ना, जो कस्टम का एरिया होता है वहाँ आती चीज की भी संभाल होती है और जाती चीज की भी संभाल होती है। अंदर क्या आया उसकी भी चेकिंग और बाहर क्या गया उसकी भी चेकिंग। तो बाहर क्या निकला उसकी भी चेकिंग चाहिए, और अंदर क्या गया क्या खाया उसकी भी चेकिंग चाहिए। इसलिए आज ही बाबा ने मुरली में बोला कि बहुत खाने पीने में बुद्धि नहीं लगानी है। वो फिर सतयुग में 36 प्रकार के व्यंजन खाएंगे, कुछ काम सतयुग के लिए छोड़ देने चाहिए, खाने पीने का काम, सोने का काम, आराम का काम, नहीं तो वहाँ क्या करेंगे। और यहाँ वाले कुछ काम है जो वहाँ नहीं कर सकते, जैसे बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुण्य है ज्ञान दान करना, तो वो वहाँ थोड़े करेंगे, वो यहाँ करेंगे। कई बार बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहना, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है, तो ये काम वहाँ नहीं कर सकेंगे। इसलिए सारी बुद्धि उन कामों में लगानी है जो अभी कर सकते हैं। और उसके बाद हाथ है, हाथ तो नौकर है, ये सबसे जो ऊंचे चेहरे के ऊपर है ना, इनके भी नौकर है, इनका आदेश पालन करते हैं। अगर मिट्टी उठानी है तो मिट्टी भी उठाते हैं, और सोना उठाना है तो सोना भी उठाते हैं, किसी के सिर पे मुकुट भी रखते हैं और किसी के पांव भी दबाते हैं, दोनों तरह के काम करते हैं। तो ये बड़े लचीले नौकर है, इनसे कुछ भी करवा लो। लेकिन ये सब किसके अधीन है, मन बुद्धि और संस्कारों के अधीन है। अगर मन बुद्धि संस्कार स्ट्रोंग होंगे और दिव्य होंगे तो ये नौकर ठीक काम करेंगे, और उनको ठीक रखने की शक्ति आत्मा में है। और आत्मा की बात वो कब मानेंगे, जब आत्मा अपनी सीट पे सेट होगी। कोई भी राजा जब अपनी सीट पे बैठ के ऑर्डर देता है तो प्रजा बहुत ध्यान से सुनती है, कोई भी जज अपनी कुर्सी पे बैठ करके जब कोई कानून कोई फैसला सुनाता है तो लोग उसको मानते हैं। अगर वो सड़क पे चलते चलते अपने घर में बैठ के कोई फैसला सुनाए कोई नहीं मानेगा। तो कुर्सी की बड़ी महिमा है, कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, आत्मा की भी एक कुर्सी है। आत्मा जब उस पे बैठ करके कोई भी ऑर्डर देती है तो मन बुद्धि संस्कार तीनों पालन करते। तो आत्मा को अपनी सीट पे सेट होने की आदत होनी चाहिए, उसको ये नशा होना चाहिए कि मैं अपनी ऊंची सीट पे बैठूं, ऊंची सीट पे बैठ करके उसको ये नशा रहे कि देखो मैं सबसे ऊंची हूं और सबकी मालिक हूं। अगर वो फिसल करके नीचे आ जाती है तो मंत्री फिर मनमानी करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बार बार स्वमान का अभ्यास करो, यही संगम युग की पढ़ाई है। जैसे मेडिकल में जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनने से पहले वो शरीर के सारे अंगों का बहुत अध्ययन करते हैं, क्योंकि बाद में उनको किसी अंग की ट्रीटमेंट करनी है, किसी अंग की ट्रीटमेंट करनी है, बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। पहले पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में जाकर के आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रजा चलानी है। सतयुग के शुरू में 2 लाख, अंत में 9 लाख, त्रेता के अंत में 2 करोड़। तो इतनी सारी प्रजा को चलाने का प्रशिक्षण वो तो संगम युग पे ही है। तो बाबा कहते हैं अगर आप यहाँ ट्रेंड होंगे तो आगे भी आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रजा मिलेगी। सतयुग में हम 9 लाख को, 2 करोड़ को और 33 करोड़ को चलाते थे, लेकिन आत्मा कमजोर होते होते कलयुग के अंत में आप देखो एक व्यक्ति अपने घर के 2 बच्चों को नहीं चला पाता। कहां 33 करोड़ पे राज करने वाला कोई राजा, और कहां केवल घर के 2 लोगों से भी हार खा लेने वाला कोई घर का मुखिया। आत्मा की शक्ति कितनी क्षीण हो गई, और इतनी अक्षीण हुई आत्मा को बाबा फिर इतना लायक बना रही हैं कि वो इतनी बड़ी प्रजा को संभाले, तो उसको अपने आप पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार देखो मेरा मन कहाँ है। हमें सबसे अधिक संभाल अपनी सूक्ष्म शक्तियों की करनी है। मन कहाँ है? बाबा ने इस सीजन की जो पहली मुरली चलाई थी वो पूरी की पूरी मन के मौन पे चलाई थी। मन जीते जगत जीत। कई बार कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरे नौकर ऐसे हैं, दुकान में नौकर ऐसे हैं, ऑफिस में पीएन ऐसा है, घर के मेंबर ऐसे हैं, मेरी बात नहीं मानते। तो हम विचार करते हैं कि देखो ये जो लोग मिले ये तो एक ही जन्म के है ना, नौकर इसी जन्म में मिला होगा 5-7 साल पहले, घर के मेंबर भी जन्म के बाद मिले होंगे, कोई 30 साल पहले मिला होगा, कोई 20 साल पहले, कोई 10 साल पहले, है ना। लेकिन ये मन तो 5,000 साल से आत्मा के साथ है। इतने पुराने साथी को तो हम मना के नहीं रखते, और कोई 5-7 साल पहले मिला उसके ऊपर हम ऑर्डर चला रहे हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। तो पहले किसको अपना बनाना चाहिए? जो पुराने वाला है। तो हमको सबसे अधिक ध्यान अपने इस पुराने साथी के ऊपर देना है कि मेरा मन मेरी कितनी बात मानता है, मेरे अनुसार कितना चलता है, और मेरी बुद्धि कैसे दृश्य देखती है। क्योंकि बुद्धि जैसे दृश्य देखेगी मन उनका अनुकरण करेगा। तो मेरी बुद्धि सारा दिन दिव्य दृश्य देखती है। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि या तो सतयुग में विचरण करे, या तो परमधाम में विचरण करे, या तो मधुबन में विचरण करे, और कहीं इसको जाने ही मत दो। तो मान लीजिए बुद्धि परमधाम को देख रही है तो मन ऑटोमेटिक पीछे पीछे परमधाम जाएगा, और अगर बुद्धि सतयुग में विचरण कर रही है तो मन ऑटोमेटिक पीछे पीछे सतयुग में जाएगा। तो क्या मेरी बुद्धि मेरे वश में है, दिव्य दृश्य देखती है? और क्या मेरे संस्कार जो मेरी सेना है वो मेरी सेना मेरे ऑर्डर का पालन करती है? तो मुझे सबसे अधिक इन तीनों को तराशना है। देखो आप लोग अपने अपने शहर से यहाँ आए, आपके शहर में आपकी जमीन होगी, आपका मकान होगा, हो सकता है बैंक बैलेंस हो, परिवार हो, और भी बहुत सारी यूज करने की चीजें हो। लेकिन यहाँ आए तो आपके साथ क्या क्या आया? जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, घर के सदस्य, घर की चीजें नहीं आए ना साथ। आप ध्यान से देखो आपके साथ क्या क्या आया। ये तो आप इस मृत्यु लोक में ही यात्रा कर रहे हो तो अभी सारी चीजें आपके साथ नहीं आ पाई, केवल दो चीजें आई, एक आपका शरीर और दूसरे आपके मन बुद्धि और संस्कार, दो ही चीजें साथ आई। तो सबसे अधिक समय आपका साथ निभाने वाली दो ही चीजें, एक आपका शरीर और एक आपके मन बुद्धि संस्कार, अभी भी आपके साथ ये दोनों चीजें। तो सबसे अधिक ध्यान हमें किन पे देना चाहिए? इन दो पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम कहीं भी जाएं तो हमारे साथ जाएंगे। एक तो मेरा शरीर स्वस्थ रहे और दूसरे मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे अनुकूल रहे, मेरे वश में रहे। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है, इन दो चीजों पर से व्यक्ति का ध्यान हट जाता है और ध्यान उन चीजों में चला जाता है जो हमारे साथ नहीं आती नहीं जाती, पदार्थ या और हमारा बैंक बैलेंस, धन दौलत, जमीन जायदाद, मित्र संबंधी, बुद्धि उनके बारे में उलझ जाती है। और इनको संवारना भूल जाती है, जबकि हमारी अधिक एनर्जी इन दो चीजों को संवारने में लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमें सदा साथ रहे। ये तो हुई इस लोक में यात्रा की बात, और फिर हम एक अगली यात्रा भी करेंगे, बड़ी यात्रा, तो फिर दो में से एक चीज रह जाएगी। वो कौन सी? शरीर छूट जाएगा, और वापस जब जाएंगे तो क्या क्या जाएगा, गिनती करो। मन, बुद्धि, संस्कार, यही हमारी दौलत है। इन्हीं को देखा जाएगा, इन्हीं के आधार पे हमारे मार्क्स होंगे। जैसे पेपर चेकिंग होती है तो इन तीनों की चेकिंग होगी, बाकी क्या क्या चीजें नीचे थी उनमें से किसी चीज की चेकिंग नहीं होगी। कितनी जमीन थी, कि जायदाद थी, कि हमारी कितनी पढ़ाई की डिग्री थी, नहीं। तो मुझे इन तीनों को बार बार चेक करना है कि ये तीनों मेरे साथ जाएंगे, ये कैसे हैं, इनके आधार पे मुझे नंबर मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अंतिम जो पेपर आएगा वो एक सेकंड होगा, बुद्धि को टिकाओ, मन को टिकाओ, बस यही पेपर होगा। तो क्या मैंने इनको इतना तराश लिया, टिकाने की बात आई तो टिका दिया, और कहीं सेवा में लगाने की बात आई तो सेवा में लगा दिया। मुझे सबसे अधिक मेहनत, सबसे अधिक पुरुषार्थ इन तीनों पे करना है, यही तो मेरी असली चीज है, असली साथी मेरे यही है। इसलिए बाबा ने कहा इस जीवन की शुरुआत बिंदु से हुई और अंत में बिंदु बन के ही वापस जाना है। स्टार्टिंग भी बिंदु है और एंड भी बिंदु है, बाकी तो बीच में सिर्फ खेल है, और खेल के मैदान में जितनी भी चीजें मिलती हैं वो खेल के मैदान में छोड़ करके खिलाड़ी खाली हाथ चले जाते। तो हम सब इस रंगमंच के खिलाड़ी हैं, हमें अपनी मन की शक्ति को बार बार चेक करना है। कई बार होता क्या है, हम सुबह उठते हैं और मन बहुत तेज गति से योजनाएं बनाने लगता है। मन को योजना बनाने में क्या देरी लगती है, विचार एक के बाद एक, एक के बाद एक, और शरीर उसने तो अभी उठ करके कुल्ला भी नहीं किया, तो इंजन इतना फास्ट और डब्बा पटरी पे आया ही नहीं, असंतुलन हो गया। मन तो दौड़ करके कहां कहां योजना बना आया, किस किस से समझौते कराया, किस किस से वायदे कराया, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी तेरे साथ करूंगा, ये भी करूंगा, और डब्बा हिला भी नहीं है। तो ये जो असंतुलन है इसका परिणाम क्या निकलता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसलिए मन से उतना ही सोचना है जितना शरीर इम्प्लीमेंट कर सके। पहले एक बात सोची, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसके बाद अगली बात सोचेंगे, दोनों साथ साथ चलें, उसको कहते हैं तन और मन का संतुलन। और जब दोनों संतुलन में रहते हैं, बाबा ने कहा था जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग है, और जहां बैलेंस बिगड़ जाता है, एक की गति तेज है, ब्लेसिंग मिलनी बंद हो जाती है। जीवन जीने का तरीका है कि मन रहे शांत और शरीर रहे एक्टिव। और आज की दुनिया में उलट गया, शरीर हो गया है बिल्कुल जड़ और मन हो गया है अति एक्टिव, और इसका परिणाम है अवसाद, तनाव, चिंता, अनिद्रा। अब बाबा ने इसका समाधान बताया, मन को सुला दो। मम्मा कहती थी मैं अपने मन को परम धाम में सुला देती हूँ। छोटा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चे को आप क्या करते हो, सुला देते हो। नहीं सुलाओगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। आप उसे अच्छे से खिला पिला करके सुला दो, जब जरूरत हो उसे उठा लेना। आपको कहीं जाना है तो बच्चे को गोदी में लेके जाओगे, तब तक सोया रहने दो। तो इस मन को परम धाम में सोया रहने दो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और आप बुद्धि के द्वारा काम करो, यूज करो बुद्धि को, मन को ज्यादा काम में मत लगाओ, इसको आराम करने दो। 5000 साल हो गए ये भागते दौड़ते थक गया है, और अगले कल्प में इसको फिर काम करना है, तो इसलिए इसको आराम करने दो। इसको कहो तुम यहाँ सो जाओ शांति में, क्योंकि हम जो बाबा के बच्चे हमको परमधाम में ज्यादा रहने को नहीं मिलता, हमको तो संगम युग में ही परमधाम की अधिकतम अनुभूति करनी है। और परमधाम में जो लंबे समय तक रहते हैं उनमें कोई शांति भर जाए ऐसा नहीं है। जो लोग पूरा कल्प ऊपर बैठे रहते हैं और कलयुग के अंत में नीचे उतर के आते हैं, तो क्या वो बहुत शांत आत्माएं होती हैं? नीचे आते ही वो सबसे अधिक अल्ला गुल्ला वही करती हैं। इसलिए कलयुग के अंत में जितनी ये अंत वाली आत्माएं उतर के आती हैं, तभी तो सारी डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए हम बच्चों को संगम युग में रहते रहते ही परम धाम की गहन शांति का अनुभव करके अपने मन को गहन शांति की अनुभूति करानी है, ताकि अगले 5000 साल तक ही उस गहन शांति में डूबा रहे, अर्थात अशांत ना हो। तो इसे परम धाम में सुला दो और अपनी बुद्धि को यूज करो सारा दिन कार्य व्यवहार में। देखो एक काम कर रही हूँ तो मेरी बुद्धि जागरूक है, मैं ये बुद्धि को यूज करके काम कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि के सामने कैसा दृश्य है। सारा दिन बुद्धि को यूज करो। तो बाबा ने कहा बच्चे जब मन परमधाम में शांति में है, बुद्धि को आप यूज कर रहे हो, तो संस्कार कैसे बनेंगे? ऑटोमेटिक डिवाइन बनेंगे। और यही वास्तव में हमारी अमूल्य पूंजी है। तो हम सब संगम युग में अपनी इस प्रजा को संभालें। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, हम पहले ये करके दिखाएं, इसमें मास्टरी करें। दुनिया में लोग बहुत चीजों में मास्टर बन जाते हैं, कहेंगे ये भोजन बनाने में मास्टर है, ये पेंटिंग में मास्टर है, ये गाने में मास्टर है, ये बजाने में मास्टर है, और लोग भाषाओं में भी मास्टर बनते हैं, ये अंग्रेजी में मास्टर है, ये संस्कृत में मास्टर है, बहुत मास्टरी हैं। लेकिन सारी मास्टरियों से ऊपर मास्टरी है मन बुद्धि संस्कार के ऊपर मास्टरी। अगर ये मास्टरी आ गई तो बाकी सारी इसको फॉलो करेंगी, और अगर ये नहीं आई, कई बार आप समाचार सुनते ही हैं कि कोई व्यक्ति मंच के ऊपर लोगों को खूब हंसाता है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में वो रात को नींद की गोलियां खाके सोता है। कोई व्यक्ति जब मंच पे आता है तो लोग उसको देख के हंसते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में हंसी नहीं है। तो ये कैसी, ये कोई जीवन थोड़ी है कि लोगों को हंसाओ और खुद खुश ना रहो। और खुद खुश हुए बिना लोगों को जो खुशी दी जाती है वो भी परमानेंट नहीं होती है। इसलिए जो चीज हमारे भीतर होती है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। तो पहले हम अपने अंदर क्रिएट करेंगे, तब बिना बोले भी वो चीज हम दूसरों को दे पाएंगे। तो संगम युग का हमारा मुख्य पुरुषार्थ यही है कि हम यहाँ राजा बन के रहें। भगवान के हम सब राजा बच्चे हैं, और एक बहुत सुंदर फार्मूला है कि जो हमेशा राजी रहता है वो राजा बनता है, और जो उदास रहता है वो दास बनता है। तो राजी कौन रहेगा? राजी भी तो वही रहेगा ना जिसका अपनी इंद्रियों पे राज्य होगा। तो हम सब बाबा के राजा बच्चे, बाबा हम बच्चों को राजा बच्चों की नजर से देखता है। दुनिया में तो कोई राजा है ही नहीं। आप चाहे किसी मिनिस्टर को ले लो, बड़े से बड़ी पोस्ट आजकल मिनिस्टरों की होती है, लेकिन क्या वो अपने मन के राजा हैं, बुद्धि के संस्कारों के राजा हैं? नहीं है ना। लेकिन यहाँ बाबा के जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब कौन है? राजा है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि अगर आपको कोई आजकल के मिनिस्टर वाली गद्दी पे बिठाने की ऑफर करे कि आप आओ इस गद्दी पे बैठो, तो आप बैठना चाहेंगे? वो ऊपर से गद्दी दिखती है लेकिन अंदर से गुलामी है, और हमारी सीट बेशक साधारण है लेकिन हम वास्तव में राजा हैं। इसलिए संगम युग में भी हम राजा हैं और सतयुग में भी राजा। हमारी दादी को किसी ने ऑफर किया था, दादी जानकी को, कि आप दिल्ली की गद्दी संभालो। तब दीदी दादी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम तो देवताओं के राजा बनेंगे, बंदरों के राजा नहीं बनेंगे। तो हम सब होवनहार देवता हैं और हम सब अपनी इंद्रियों के राजा हैं, आज भी राजा हैं और कल भी राजा बनने वाले। ओम शांति।